संबंध इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस राज विद्या की महिमा कही गई है, अब आगे के दो श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थित न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझमें स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तथा वे प्राणी भी मुझमें स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग माने सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। व्याख्या मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यह भगवान ने मया पद से व्यक्त साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त निराकार स्वरूप बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी हैं। इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त अव्यक्त कहने की गूढ़ाभि संधि समग्र रूप से है। सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है, वास्तव में परमात्मा एक है। ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं, अलग अलग नाम हैं। गीता में जहां सत असत शरीर शरीरी का वर्णन किया गया है वहां जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है येन सर्वमिदं ततम 2:17। क्योंकि ये परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है, परमात्मा के साथ इसका अभेद है। जहां सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया है वहां बताया है कि येन सर्वम इदम ततम 8:22। जहां कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है वहां भी कहा है येन सर्वम इदम ततम 18:46। इन सब के साथ एकता करने के लिए ही भगवान यहां कहते हैं मया ततमिदं सर्वम। मत्स्थानि सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणी मुझमें स्थित है अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा जगत मुझमें ही स्थित है, वह मुझको छोड़कर रह नहीं सकता। कारण कि संपूर्ण प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और मुझ में ही लीन होते हैं। उनका उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वो सब मुझ में ही होता है, अतः वे सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। नचाम तेष्व अवस्थित है। पहले भगवान ने दो बातें कही, पहली मया ततमिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, और दूसरी मत्स्थानी सर्वभूतानी। अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध दो बात कहते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं, इसके विरोध में कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन मुझ में भी होता, उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य यह है कि उनका तो परिवर्तन नाश और अभाव होता है, परंतु मुझ में कभी किंचन मात्र भी विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूं, उनसे सर्वथा संबंध रहित हूं। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूं। वास्तव में मैं उनमें स्थित हूं, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती। जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है, इसलिए कहा है कि मैं उनमें स्थित हूं। नचम स्थानी भूतानी। अब भगवान दूसरी बात बोलते हैं, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है। इस बात के विरुद्ध यहां बोलते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। कारण कि अगर वे प्राणी मुझ में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूं, वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। मैं एक देश में हूं और एक देश में नहीं हूं, एक काल में हूं और एक काल में नहीं हूं, एक व्यक्ति में हूं और एक व्यक्ति में नहीं हूं, ऐसी परिच्छिन्नता मुझ में नहीं है। तो संसार में भी ऐसी परिच्छिन्नता नहीं होती। तात्पर्य यह है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मुझ में है, वैसे ही इन प्राणियों में भी होते। परंतु ऐसी बात है नहीं, मेरी स्थिति निरंतर अटल रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती। तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मुझ में स्थित नहीं है। अब उपर्युक्त विधि परक और निषेध परक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझे। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, इस कारण जल को छोड़कर तरंग रह नहीं सकती। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार आश्रय केवल जल ही है, जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अब वास्तव में परमात्मा को छोड़कर संसार रह थोड़ा ही सकता है। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग के रूप में दिख रहा है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला होने से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, अर्थात केवल परमात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार के रूप से दिख रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्व से जल एक ही है, तरंग नहीं है, ऐसे तत्व से एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है, वासुदेव सर्वम। अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं, मिट्टी में ही लीन होते हैं, अर्थात उनका आधार मिट्टी ही है, इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तन के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी मिटती नहीं है, अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही है, अर्थात अपने आप में स्थित है। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है। कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो अपने आप में ही स्थित है। ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हर की पेड़ी दिखने लग गई, बीच में घंटाघर बना हुआ है, उसके दोनों ओर गंगा जी बह रही है, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियां उछल कूद मचा रही हैं, यह सब का सब हरिद्वार मन में है, इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ पत्थर जल मनुष्य मछलियां आदि मन ही है। परंतु जहां चिंतन छोड़ा वहां फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा। ऐसे ही परमात्मा ने बहुश्याम प्रजा ये संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया। उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट हुए। परंतु जहां परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहां फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है, परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहां संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, वहां तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, यही जीवन मुक्तों की भक्तों की दृष्टि है। पश्चिमे योगमैश्वरम, मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मुझ में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मुझ में नहीं और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूं, अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूं, अपने आप में स्थित हूं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को अर्थात सामर्थ्य को प्रभाव को देख, तात्पर्य यह है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूं और अनेक रूपों से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूं, अतः केवल मैं ही मैं हूं। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। जानना बुद्धि से और देखना नेत्रों से होता है। भगवान के योग को जानने की बात यहां आई है और उसे देखने की बात 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में आई है। भूतवृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना है, मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूं, उनमें लिप्त नहीं हूं। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि क्षर जगत और अक्षर जीवात्मा दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जिसको परमात्मा नाम से कहा गया है और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहमता ममता से रहित हूं और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूं, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूं, ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहंता ममता न करे और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित न माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान की लीला देखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला करते हैं तो कभी स्थिति की लीला करते हैं, कभी संहार की लीला करते हैं। ये सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है और इसमें जो परिवर्तन होता है वो सब भगवान की लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। मार्मिक बात, सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को खूब गहरा उतरकर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। यथार्थ अनुभव की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे तो आपका सिद्धांत तो बहुत अच्छा है आदि आदि कोई कहे तो उसको अपने में बड़प्पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर करे इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है परमात्मा है, ये तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं है आदि, ऐसे काट छाड़ से साधक को किंचन मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की कि प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है आदि आदि। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव तो होना नहीं चाहिए और अपने में कोई अभिमान आदि का विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए, इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही न पड़े। परिशिष्ट भाव, मया ततमिदं सर्वम्। कहने का तात्पर्य है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता रूप से एक शमशांत सदघन चिदघन आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है, जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है, वह भी परमात्म तत्व की सत्ता के कारण ही है। जब सब में एक विभक्त सत्ता ही परिपूर्ण है, तो फिर उसमें तू मैं यह वह ये चार विभाग हो ही कैसे सकते हैं? अहमता ममता हो ही कैसे सकती है? राग द्वेष हो ही कैसे सकते हैं? जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे किया जाए? भगवान ने मत्स्थानी सर्वभूतानी के लिए नचमस्थानी भूतानी पद कहे और मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना के लिए नचाम तेष्वस्थित ये पद कहे। जब तक साधक में ये भाव है कि परमात्मा और संसार दो हैं, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। छठे अध्याय का 30वां श्लोक। परंतु जब दो का भाव न हो, तब न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने दी है, येदम धारयति जगत। संसार की स्वतंत्र सत्ता अहंता ममता और कामना के कारण ही है। अतः जब तक अहंता ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहमता ममता और कामना के मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है, उसकी दृष्टि में तो एक परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम्। परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, ये ज्ञान है। और न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ये विज्ञान है। श्रीमद् भागवत में आया है कि जब तक साधक की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र सत्ता है, तब तक वह अपने बर्ताव के द्वारा प्राणियों में भगवत बुद्धि से उपासना करे। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवम् उपासीत वाङ्मनः कायवृत्तिभिः। 11वां स्कंद 29वां अध्याय 17वां श्लोक। परंतु जब उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता न रहे, केवल भगवान ही रह जाए, तब सब कुछ भगवान ही है, इस चिंतन से भी उपराम हो जाए। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यायात्ममनीषया परिपश्यन् उपरमेत सर्वतो मुक्त संशय है। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन है। भगवान संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव है, गीता 10:8। अहम कृष्णस्य जगत प्रभव है, 7:6। उन प्राणियों का भरण पोषण भी भगवान ही करते हैं। यो लोकत्रय माविष्य विभर्त्य व्ययेश्वर है, 15:17। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने और उनका भरण पोषण करते हुए भी भगवान उनमें लिप्त आसक्त नहीं होते, उनके आश्रित नहीं होते। भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है, अतः उन प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय जड़ता की सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः है। दो का सोड़ा। जड़ता की सत्ता, महत्ता और संबंध केवल कामना के कारण ही है। अतः जब तक सुख की इच्छा है तभी तक ये संसार है। जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्म रूप से न देखकर संसार रूप से देखते हैं, वे नास्तिक होते हैं। परंतु जो संसार में परमात्मा को देखते हैं, अर्थात संसार को संसार रूप से न देखकर परमात्मा के रूप से देखते हैं, वे आस्तिक होते हैं।